Yada vinigatam chitam atmanyeva titashtate nispraha sarvakamebhyo yukta itya utyuchate tada. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to have attained yoga. Yatha dipo nivatashto nengate sopama smrita yogino yatichitasya yunjato yogamatmanaha. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent self. We are reading this evening from the 6th chapter of Bhagavad Gita.
भगवद गीता के छठे अध्याय से आज हम पढ़ रहे हैं.
Krishna is explaining here what is the true meaning of yoga.
योग का सही अर्थ क्या है ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं.
Yoga means that process which brings our consciousness back to its original natural condition.
Yoga ka arth yeh hai ki wo tarika jiske dwara hamari chetna apne mool swaroop mein wapas laut sakti hai.
At the particular time, our mind is diverted due to the objects of the senses and the false ego away from the true nature of our consciousness.
अभी इस समय इंद्रियों के विषयों के कारण हमारा मन जो है वो सही वस्तु से दूर जा रहा है.
Therefore, there is so much suffering in this world.
इसीलिए इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं.
According to the Bhagavad Gita, suffering is due to illusion.
भगवद गीता के अनुसार दुख का कारण माया है.
When the body identifies itself with this temporary material body, which is subject to innumerable pains, then the soul puts itself in a condition where it inevitably must suffer.
जब आत्मा अपने आप को ये शरीर मान जाती है, तब वैसी स्थिति में डाल देती है कि फिर उसको दुख भोगना ही पड़ता है.
In fact, greater than the pains of the body are the pains of the mind.
वास्तव में देखने जाए तो शारीरिक दुख से बढ़कर है मन का दुख.
Therefore, Krishna gives us a simple and wonderful process by which we can purify our lives from all suffering forever.
इसीलिए श्री कृष्णा जो है बहुत सरल तरीका देते हैं जिससे हम अपने मन को हमेशा के लिए शुद्ध कर सकते हैं.
And that is by keeping our mind and our senses always engaged in his loving service.
और वो तरीका ये है कि अपने मन और इंद्रियों को उनके प्रेममय सेवा में लगाएं.
According to the Bhagavad Gita, all that we eat, all that we do, all that we offer and give away, everything should be done as an offering to God.
भगवद गीता के अनुसार हम जो कुछ भी खाते हैं जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए.
This is the highest perfection of life and the supreme goal of yoga or religion.
यही जीवन की परम सिद्धि है और यही जो है योग का परम चरण है.
Some people, they want peace.
कोई लोग शांति चाहते हैं.
To have peace is not the perfection of life.
शांति प्राप्त करना ये जीवन की सिद्धि नहीं है.
After all, Arjuna wanted peace, and Krishna spoke the Gita to convince him to go into a battlefield and fight a war.
अर्जुन का भी यही उद्देश्य था कि शांति रखना, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम्हें लड़ाई करनी है।
Recently, someone told me that they were meditating and they were finding great peace in this meditation.
कई लोगों ने उनको महाराज को बताया कि वो ध्यान कर रहे थे और उसको बहुत शांति मिल रही थी।
I told them this is very nice.
उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अच्छा है।
But this is not at all what we want.
लेकिन ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं।
We don't care for peace.
हम शांति की परवाह नहीं करते।
We want love.
हमें प्रेम चाहिए।
The perfection of life is not simply a neutral condition of peace, but love.
जीवन की सिद्धि जो है वो शांति में नहीं बल्कि प्रेम में है।
Love means the willingness to sacrifice oneself for the beloved.
प्रेम का मतलब यह है कि अपने प्रेमी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहना।
Just like a mother in its relationship with her child. Does a mother concern herself for peace in the house, or is she concerned herself with taking nice care of the child out of love?
जैसे माता होती है, क्या माता ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूं, या वो अपनी शांति की परवाह करती है?
You see, when a woman has a little baby, there's practically no peace in the house.
जैसे अगर एक घर में छोटा बालक हो माता के पास, तो कोई शांति नहीं होती।
The baby is crying all night long.
वो बच्चा जो है पूरा रात रोता रहता है।
The baby is responding to nature indiscriminately wherever it goes.
और कभी भी वो प्रकृति के नियम के अनुसार कहीं पर भी कर देते हैं।
The baby is just looking to for any excuse to hurt itself.
और कोई भी बहाना लेकर अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं।
Very fond of breaking anything it gets its hands on.
और जहां हाथ लग जाए उसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
Now, the mother can easily just give the baby to somebody else, some babysitter. You take care of it. I don't want anything to do with it. And there will be some peace.
अगर माँ चाहे तो बच्चे को किसी को भी दे दे कहे कि तुम इसका ख्याल रखो और उसे उसको शांति मिल सकती है।
But the mother's running here and there, everywhere, trying to take care of this child.
लेकिन माँ जो है यहाँ वहाँ घूमती रहती है बच्चे का ख्याल रखने के लिए।
She's staying up sometimes all night long.
और कभी पूरी रात्रि जागना पड़ता है।
Always worried about the child hurting itself.
हमेशा बच्चे को डर लगा रहता है कि चोट नहीं लग जाए।
That is love.
ये प्रेम है।
Love is higher than peace.
प्रेम जो है वो शांति से ऊंचा है।
Because in that love is an internal peace.
क्योंकि इस प्रेम में जो है अंतरंग शांति है।
Not the peace of the mind, but the peace of the soul.
ये मन की शांति नहीं बल्कि आत्मा की शांति है।
Similarly, Arjuna, when he saw that this was going to be a terrible battle, he decided, Krishna, I want to be a yogi and I want peace. Therefore, Bhagwan, I will not fight.
जब अर्जुन ने देखा कि लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने सोचा कि शांति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान से कहा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा।
And Bhagwan said, you want peace, but I don't want peace. I want war.
भगवान ने बताया कि मुझे शांति नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लड़ाई चाहिए।
So which is higher, to surrender to my will and fight for me and make sacrifice for me, or have peace for yourself?
तो क्या ऊंचा है कि मेरे प्रति समर्पण करके मेरी लड़ाई करना या अपने आप के लिए शांति प्राप्त करना?
Love means sacrifice.
प्रेम का मतलब है त्याग करना।
Sacrificing even our own peace for the pleasure of the beloved.
अपने प्रेमी के लिए अपने खुद की शांति का भी त्याग करने के लिए तैयार है।
That is love.
यही प्रेम है।
And Krishna, he reciprocates according to how we make our life an offering to him.
और कृष्ण हमारा उसी व्यवहार करते हैं जैसे हम अपना जीवन उनको अर्पण करते हैं।
You see, there is temporary mental peace and there is the eternal peace of the spiritual world. That is what Krishna wants every one of his children to enjoy.
एक तो है कि जो दुनिया की जो शांति कुछ समय के लिए, और एक है शाश्वत आत्मा की शांति, और भगवान चाहते हैं कि हम सब वो आनंद लें।
And that comes to the extent that we surrender to him.
और उतनी आती है जितना हम समर्पण करते हैं।
Srila Rupa Goswami has said that the illusion of this world is to try to keep as much as we can for ourselves.
रूप गोस्वामी बताते हैं कि माया यह है कि हम अपने लिए बहुत कुछ रखना चाहते हैं जितना।
And to make God our order supplier.
और भगवान को हम अपना सेवक बनाना चाहते हैं।
that I go to the temple to beg God to give me all that I need in my life.
हम मंदिर जाके भगवान से मांगते हैं कि मुझे जो भी चाहिए मुझे दीजिए.
Sometimes I need money.
कभी मुझे पैसे चाहिए.
Sometimes I need good health.
कभी मुझे अच्छी तबीयत
चाहिए. Sometimes I need progress in my business endeavors.
कभी अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए.
Sometimes I need nice prestige.
कभी मुझे जो है अच्छी स्थिति चाहिए.
Sometimes I want a new house or a new car.
कभी नया घर या कार चाहिए.
Or I want my children to have nice husbands and wives.
मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो उसके अच्छे पति पत्नी हो.
In this way, we simply demand God, give me, get me, can I?
और हम भगवान से ऐसे याचना करते रहते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो.
There is no love in that relationship.
इस रिश्ते में कोई प्रेम नहीं है.
God may give you.
भगवान दे दें.
But even if you receive all the things you ask for, there will be no true satisfaction in your life.
अगर आपको सब कुछ मिल भी जाए तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी.
Because Krishna explains in Gita, यही संस्पर्शज भोग दुख जो नाय एवते अत्यंतवंत कौन्ते या नाते सुरमते बुधा. That an intelligent person does not take part in the pleasures between the senses and their objects, because he knows they have a beginning and an end.
एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में सुख नहीं लेता क्योंकि उसका शुरुआत और अंत होती है.
There's no real satisfaction.
इसमें कोई संतुष्टि नहीं है.
It only leaves us with a longing for more.
हमारे अंदर सिर्फ एक इच्छा रहती है कि मुझे ज्यादा मिले वो.
Therefore, Krishna explains in Gita that the real goal of life, the real perfection of life, is to learn how to become a servant.
इसलिए कृष्ण भगवान बताते हैं कि जीवन का सच्चा उद्देश्य है ये जानना कैसे एक अच्छा सेवक बना जाए.
In fact, the Srimad Bhagavatam explains, "Savai pung sang paro dharmo yato bhakti rhokshajay ahoyit ki aprati hata yayatma suprasidati." That the supreme perfection, the highest occupation for all humanity, is that which brings about loving service to the Lord. And such service must be completely unmotivated and uninterrupted to completely satisfy our soul.
श्रीमद् भागवत में बताया गया कि परम धर्म वही है जो कि भगवान के प्रति सेवा है, और ऐसी सेवा जो है अहेतु की और बिना रुकावट के होनी चाहिए जिससे आत्मा को संतुष्टि प्राप्त कर सके.
There is a story in the Bhakti Rasamrita Sindhu about one of Krishna's servants.
भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के एक सेवक की कहानी बताई जाती है.
It was very hot day like today.
बहुत गर्म दिन था जैसे आज है.
And Krishna's servant was fanning Krishna with peacock fan.
भगवान का सेवक जो है भगवान को मोर पंख से जो है पंखा कर रहा था.
Today we have these big gigantic motorized fans that make so much terrible noise, but in those days they would just go like this.
आजकल तो ऐसे मोटर के पंखे होते हैं बहुत आवाज करते हैं.
Doesn't take much devotion to turn on a switch, but it takes a lot of devotion to stand there like this.
पंखा चालू करने में तो कोई ज्यादा भक्ति नहीं लगती लेकिन पंखा से कर.
Through all of our mechanical means, we are taking the opportunity of service away from our own selves.
ये आजकल के भौतिक चीजों के द्वारा हमारे सेवा का अवसर चला जाता है.
Anyways, he was fanning Krishna very nicely.
वो भगवान को पंखा कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से.
And as he was looking at the beauty of Krishna, he just fell into ecstatic love.
और जैसे वो कृष्ण की सुंदरता को देख रहे थे वो भाव विह्वल हो गए.
And tears filled his eyes.
उनके आंखों से अश्रु बहने लगे.
And his limbs began to tremble in ecstasy.
शरीर कांपने लगा.
And he began to pray to Krishna, please take away all these feelings of ecstasy.
भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये सब भावनाओं को निकाल दीजिए.
Because if my arm is trembling, I might be feeling ecstasy, but I cannot fan you properly.
क्योंकि अगर मेरे हाथ कांप रहे होंगे तो मैं ठीक से आपको जो है पंखा नहीं कर पाऊंगा.
And if my ears are so, if my eyes are so filled with tears, I cannot see where to fan you.
और अगर आंखों में आंसू भरे हैं मैं देख भी नहीं पाऊंगा कि कहां फैन करना है.
I am not here to enjoy ecstasy. I am here simply to give you pleasure.
मैं यहां भाव का आनंद लेने के लिए नहीं हूं लेकिन आपको आनंद देने के लिए हूं.
It is this service attitude that is true bhakti.
ये सच्चा सेवा भावना जो है यही सच्ची भक्ति है.
And actually there is nothing that gives Krishna greater pleasure than when we are willing to make sacrifices for the benefit of others.
कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद इसी में होता है कि दूसरों के लिए हम त्याग करें.
We read long ago when the demigods and the demons were churning the ocean of milk. Terrible, deadly poison was the first thing that came out of that ocean.
हम पढ़ते हैं कि जब देवता और दानव जी अमृत मंथन कर रहे थे तो उस समय पहले एक जहर निकल आया था उसमें से.
You know the story. The demigods and the demons, they found out that there was an ambrosial nectar that can make you immortal within the ocean, and it had to be churned for it to rise to the top. It's like the churning of butter to bring the milk, the butter to the top.
तो ये जो कथा थी बताई जाती है कि देवताओं और दानव को पता था कि ये समुद्र का मंथन करने से अमृत आ सकता है.
But as they began to churn, the first thing that came out was terrible, deadly, ugly, black poison.
तो पहली चीज वो बहुत ही खतरनाक भयंकर जो है काला जहर निकला.
Similarly, we should know that when we take to the process of yoga, when we begin devotion service to the Lord by chanting His holy name and meditating on His divine glories and qualities, the first thing that happens when we start churning our consciousness is all the poison comes out.
उसी तरह से जब हम भक्ति की विधि को अपनाते हैं तो पहली चीज जो वो निकलती है वो सब हमारे हृदय का जहर बाहर निकल आता है.
Sometimes people, when they start practicing spiritual discipline, their mind and senses become even more disturbed than when they began.
और कई बार ऐसा होता है कि जब वो भक्ति के योग तैयार करते हैं तो पहले से भी ज्यादा जो है मन और इंद्रियां विचलित हो जाती हैं.
This is actually a very good sign.
ये एक बहुत अच्छा लक्षण है.
This means all the disease is starting to come out. Let it come out.
इसका मतलब सारी बीमारी निकल रही है, उसको निकलने दो.
After it's out, then the real nectar can be enjoyed.
वो बाहर निकलने पर सच्चा अमृत का भोग किया जा सकता है.
So when this poison just started flowing everywhere, the citizens realized that this poison is going to destroy all life in the earth.
जब इस तरह जहर निकलने लगा तो सबको समझ में आ गया कि ये जो है पूरे पृथ्वी को नाश कर देगा.
So they approached Lord Shiva and said, "Can you help us?"
वो शिवजी के पास गए कि आगे आप हमारी मदद कर सकते हैं.
He said, "I must do something to save my friends."
तो वो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ही चाहिए अपने मित्रों को बचाने के लिए.
He told Bhavani, his beloved wife, that all of these poor living entities are going to die and suffer if something is not done with this poison. Therefore, I will drink it myself.
तो भगवान से कहने लगे कि ये सब प्राणियों का नाश हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद ही इसको पी जाऊंगा.
And when he drank that poison, his throat became black.
और वो पीने से जो उनका गला काला हो गया.
Therefore, he is known as Kalakanta or Nilakanta.
इसीलिए उनको कालकंठ या नीलकंठ कहा जाता है.
This name means that he was willing to sacrifice his own self for the benefit of showing compassion to others.
इसका मतलब ये है कि वो अपने आप का त्याग करने के लिए तैयार थे दूसरे पर कृपा करने के लिए.
This is the highest service to God.
यही सर्वोच्च सेवा है भगवान के प्रति.
Willing to make sacrifices and even endure suffering and pain to help others.
त्याग करना और दूसरों के लिए दुख सहन करने के लिए तैयार रहना.
And we find so many great saintly persons have done like this.
और कई जो है ऐसे संत पुरुषों ने ऐसा किया है.
In the Bhagavatam it is said, Athapumbir dvijasrestas varanashrami vibhagasha svanushtatasya dharmasya samsadir haritoshanam. That whatever our occupation may be, whatever field of work we have in this world, the perfection of our life is to perform your work in such a way that it pleases Krishna.
भागवत में बताया गया कि हमारा कोई भी जो है धंधा हो अब उसका सफलता इसी में है कि अगर हम वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकें.
Arjuna learned better than going to the Himalayas to enjoy peace was to fight the most terrible war in the history of mankind for the pleasure of Krishna.
अर्जुन ने सीखा कि हिमालय जाकर शांति प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है कि भगवान के लिए एक भयंकर लड़ाई करना.
To bring about morality, justice and spirituality to humankind.
दुनिया में नीति आध्यात्मिकवाद लाने के लिए.
This teaching is meant for each and every one of us today.
ये शिक्षा हम में से हर एक के लिए है आज के समाज में.
How the art of living can be practiced in our daily life is the message of the Gita.
ये जीवन की कला हम कैसे हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं यही गीता का संदेश है.
We must keep our mind fixed in the goal, in the perfection, which is loving devotional service to Krishna through the benefit of other living beings.
हमारा जीवन का ध्येय निश्चित होना चाहिए कि वो है भगवान के प्रति सेवा करना दूसरों के हित के लिए.
In this regard, I would like to speak briefly about one of Krishna's beautiful pastimes, which exhibits how, according to our occupation, we can either spoil our life or perfect our life.
उसके बारे में कथा बताएंगे कि इससे मालूम पड़ता है कि हम कैसे अपने जीवन को सफल कर सकते हैं या बेकार कर सकते हैं.
When Krishna was living in Vrindavan, Akrura came on the order of Kamsa to bring him to Mathura.
जब कृष्णा वृंदावन में थे तब अक्रूर उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आ गए.
Mathura was a very, very big cosmopolitan city.
मथुरा एक बहुत ही बड़ा शहर था.
You could say something like Bombay.
वो कुछ मुंबई जैसा ही था.
It was a big city.
बड़ा शहर था.
But not exactly like Bombay.
लेकिन बिल्कुल बॉम्बे की तरह नहीं था.
It was a very wealthy, very rich city.
बहुत ही समृद्ध शहर था.
And the king was Kamsa.
उसका राजा कंस था.
So Krishna and his friends, they had never been to a big city before.
कृष्ण और उनके मित्र कभी ये शहर में गए नहीं थे पहले.
They decided, let us this evening take a walk and see the wonderful sights of Mathura.
उन्होंने सोचा कि चलो आज हम घूम के देखेंगे मथुरा के सुंदर स्थली क्या हैं.
Krishna wanted to take his gopa friends sightseeing.
कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों को ले जाना चाहते थे दिखाने के लिए.
So they went walking through the streets of Mathura.
तो मथुरा की सड़कों से गुजरने लगे.
And there was one washerman.
वहाँ एक धोबी था.
Who had many servants.
बस कई सेवक थे.
And they were carrying big, big piles of newly dyed and washed cloth.
और वो बड़े-बड़े जो है वस्त्र लेकर जा रहे थे.
And Krishna saw it, and he was with Balaramji, his brother. And he said, "My dear washerman, these are very nice cloths. I would like you to give me the best cloths."
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धोबी ये जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ जो वस्त्र है वो आप मुझे दे दीजिए.
And also for my friends.
और मेरे मित्रों के लिए भी दीजिए.
Vivo.
Haribol.
You are falling asleep. That's right.
आप सो रहे हैं.
He's very surrendered soul.
ये वो समर्पित जीव है.
He said correct? हाँ. So this washerman, he became very angry.
तो धोबी बहुत क्रोधित हो गया.
He looked at Krishna and Balaram. He said, "You are a fool."
वो कृष्णा बलराम को देखकर कहने लगे, तुम तो बड़े मूर्ख हो.
You are spoiling your life.
तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो.
Do you not know that these clothes are meant for Kamsa, the king?
तुमको मालूम नहीं है क्या ये कंस जो राजा है उसके लिए बनाए गए हैं कपड़े?
How dare you ask to wear what belongs to the king?
तुम्हारे अंदर ये कैसे हिम्मत हुई कि राजा की चीज को खुद पहनने के लिए मांग रहे हो?
You should be arrested and punished for this.
तुमको गिरफ्तार करके सजा दी जानी चाहिए इसके लिए.
I will not give you anything.
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा.
So Krishna became angry.
तो कृष्ण क्रोधित हो गए.
And with the tips of his fingers, he touched the washerman.
तो अपने उंगली के आगे के भाग से उन्होंने बस उनको छुआ धोबी को.
In the neck.
गले में उनको छुआ.
And do you know what happened?
उसका फल क्या हुआ?
His head fell to the ground.
उसका सिर जो है वो गिर पर गया जमीन पर गिर गया.
रिवो.
रिवो.
Of course, because Krishna cut off his head with the fingertips, he was liberated.
क्योंकि कृष्ण ने उसका गला काटा इसलिए वो मुक्त हो गया.
But Krishna wanted to show the world. Bhoktaram yoga tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatvamam shantimrichyati. That I am the proprietor of everything and everything is meant for my enjoyment.
भगवान दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं ही स्वामी हूं और सब कुछ मेरे भोग के लिए है.
The washerman, he was not spontaneously serving Kamsa with love.
धोबी जो है कंस को कोई प्रेम से सेवा नहीं कर रहा था.
He wanted to give Kamsa the clothes so that Kamsa would pay him.
वो कंस की इसलिए सेवा कर रहे थे कि उसको पैसे मिले.
So therefore he was motivated by greed.
इसलिए उनका उद्देश्य लोभ था.
And he refused to give what was Krishna's to Krishna because of greed.
और लोभ के कारण कृष्ण की चीज वो कृष्ण को नहीं देना चाहते थे.
And Krishna responded by killing him.
और कृष्ण ने इसलिए उसको मार डाला.
Die to live.
जीने के लिए मरना है.
This is the goal of life.
यही जीवन का उद्देश्य है.
Unless we die from all of our own greedy propensities and are willing in this life to offer our service to Krishna, ultimately Krishna will bring us all to the same destiny of this washerman.
अगर हम अपनी लोभी प्रवृत्तियों को त्याग नहीं करते तो हमारी भी वही गति होगी जो धोबी की हुई.
For a devotee, death comes as Krishna.
एक भक्त के लिए मृत्यु जो है वो कृष्ण के रूप में आती है.
For a materialistic, selfish, greedy person, Krishna comes as death.
और एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कृष्ण जो है मृत्यु के रूप में आते हैं.
Ultimately, those who want to live and work without Krishna as the goal of their sacrifices, their final destination in life is to meet God in the form of death.
जो कृष्ण को जो है उद्देश्य नहीं बना रहे अपने यज्ञ का, उनका अंतिम उद्देश्य यह है कि कृष्ण को मृत्यु के रूप में प्राप्त करेंगे.
And ultimately, even though you try to hold on to what you have with all your might, Krishna gets it anyway.
अगर आप सब चीज को संभाल के रखें फिर भी कृष्ण को सब कुछ मिल ही जाता है.
When you die, you cannot take any of your money or any of your fortune or any of your fame, anything with you. Krishna just takes it all back.
जब आपकी मृत्यु होती है तो पैसा या संपत्ति या यश कोई भी आपके साथ नहीं जाता, सब कुछ श्री कृष्ण छीन लेते हैं.
It was Krishna's before you had it, it's Krishna's while you have it, and it will be Krishna's after you leave this world.
पहले भी कृष्ण का ही था, अभी भी कृष्ण का है और बाद में भी कृष्ण का ही रहेगा.
The perfection of life is simply to admit the fact that it's Krishna's.
जीवन की सिद्धि इसी में कि ये बात को मान लेना कि ये कृष्ण के लिए है.
And use it for Krishna.
और उसको कृष्ण के लिए उपयोग करें.
So after the washerman was dead, Krishna took the washerman's servants. They became very afraid. They just ran. They just dropped their clothes and ran for their lives in all directions.
और धोबी के सेवक जो हैं वस्त्रों को वहीं पर रखकर सब जगह भागने लगे.
And Krishna began putting on the nice garments, and then he gave to Balaram and he gave to the other gopis, and they all became very nicely dressed up.
और कृष्ण ने खुद वस्त्र पहने, बलराम को दिए और सब गोपों को दिए, सब अच्छे वस्त्र पहन लिए.
हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल.
Why don't you say Haribo after he says Haribo? Huh. So then Krishna went on with his sightseeing tour with his friends.
तो कृष्ण जो है फिर अपने मित्रों के साथ आगे बढ़े देखने के लिए.
And they came upon a tailor, one who sews clothes.
फिर एक दर्जी के पास पहुंचे जो कपड़े सीता.
And this person, when he saw Krishna, he immediately bowed down.
जैसे उसने कृष्ण को देखा वो झुक गए वहां.
And with cloth he began to make little earrings and bracelets and decorate Krishna's whole body and Balaram and all of his friends.
वो वस्त्रों के द्वारा जो है अनेक रूप से कृष्ण बलराम और सब गोपों के लिए चीजें देने लगे.
He said, all I want to do is just please you and decorate you.
बोले मैं यही चाहता हूं कि आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आपको सजाना चाहता हूं.
Please be merciful to me.
कृपया मेरे ऊपर दया करिए.
And Krishna said to this simple and humble servant, he said, I give you the blessing that you will attain the spiritual world of Vaikuntha.
भगवान ने उनसे कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपको आध्यात्मिक जगत वैकुंठ मिलेगा.
And in this life, all your desires will be fulfilled.
और इस जीवन में आपकी सारी इच्छाएं जो पूरी हो जाएंगी.
You will have long life, you will have wealth, you will have good health, you will have everything you want for yourself and your family.
आपको अपने लिए परिवार के लिए जो भी चीज चाहिए लंबी उम्र वगैरह सब मिल जाएगा आपको.
And you will also have unflinching devotion to me.
और मेरे प्रति भी तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी.
So he was very happy.
इससे वो बहुत संतुष्ट हो गए.
And then Krishna went to a flower garland maker named Sudama.
फिर वो एक माली के पास गए जिसका नाम सुदामा था.
And when he came to Sudama's house, Sudama was so happy. He bowed down.
सुदामा इतने प्रसन्न हुए वो झुक के उन्होंने प्रणाम किया.
And then he brought Krishna into his home and he placed him on a nice seat along with Balaramji and his friends. And then he washed Krishna's lotus feet with his own hands.
कृष्ण बलराम को आसन पर बिठाकर अपने हाथों से उनके चरण कमल धोए.
Then he offered him argya.
उनको फिर अर्घ्य अर्पण किया.
And sweet scented drinks and some fruit and prasad.
और फ्रूट वगैरह प्रसाद अर्पण किया.
And then he bowed down again with tears in his eyes and began to pray.
वो झुककर जो है आंखों में अश्रु होते हुए प्रार्थना करने लगे.
That this is the perfection of my life.
यही मेरे जीवन की सिद्धि है.
That I have washed your lotus feet today, my Lord.
कि मैंने आपके चरण कमल को धोया है.
And this water I have sprinkled on the head of myself and my family members. Therefore, we are all eternally blessed.
मैंने ये चरण कमल का पानी अपने सिर पे डाला है इसलिए हमारा हमें नित्य आशीर्वाद मिल गया है.
The sacred river Ganges is purifying the whole world only because she has washed these same lotus feet.
गंगा पूरे दुनिया को शुद्ध इसीलिए कर रही है क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से ही आती है.
बाली महाराज attained the supreme destination of devotion simply because he was touched by the soles of these lotus feet on the head.
बाली महाराज को परम गंतव्य स्थान इसीलिए मिला क्योंकि आपके चरण कमल उनके सिर पर आए.
Lord Shiva constantly carries the water of the Ganges on his head because he knows it has been washing your lotus feet.
भगवान शिव भी गंगा जी को अपने जटा पर रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके चरण कमल.
And today by your supreme mercy you have come into my house and allowed me to wash your feet.
और आपकी आज ये कृपा है कि आप हमारे घर में आकर चरण कमल.
You are the supreme controller, the cause of all causes and the lord of all.
आप ही सर्वेश्वर सब कारणों के कारण हम सब.
And yet you are so merciful that you are willing to come to such an insignificant person's house as me.
फिर भी आप इतने कृपालु हो कि ऐसे मेरे जैसे क्षुद्र प्राणी के घर में आए हैं.
The greatness of the great is that they are willing to come down to the smallest of the small to help them.
जो महान व्यक्ति हैं उनकी महानता यही है कि वो छोटे व्यक्ति के पास आ जाते हैं.
Krishna, who in the spiritual world is being worshipped by thousands and thousands of goddesses of fortune with the most celestial opulence.
Krishna, जो कि जिनको लक्ष्मी जो है सहस्त्र रूप से सेवा करते हैं ऐश्वर्य सहित.
But he takes great pleasure coming to the house even of such a poor and insignificant devotee to give him his mercy.
और वो बड़े आनंद से एक छोटे से भक्त के भी घर में आते हैं कृपा करने के.
So with tears of love in his eyes, Sudama bowed down to Krishna and said, "I am your servant. How can I serve you, my Lord?"
Sudama आंखों में आंसू भरकर कहने लगा है, भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
And then he knew in his own mind what he could do to serve Krishna.
फिर उसको मन में मालूम पड़ा कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ.
He was a garland maker.
वो माला बनाने वाले थे.
So he went and got the best, the nicest and most fragrant garlands and he placed them on the neck of Krishna and Balaram and all of Krishna's friends.
वो बहुत ही सुंदर सुगंधित फूल ले आए और कृष्ण बलराम और गोपों को माला पहनाए.
All Krishna expects for us is simply that whatever we can do, we do it for him.
कृष्ण भगवान हमारे से यही आशा करते हैं कि हम जो भी करें उनके लिए करें.
पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त प्रयाच्छति. कृष्ण says, even if you are such a poor person, just offer me a fruit, a little water, a leaf or a flower, and I will accept it with great pleasure.
कृष्ण कहते हैं अगर आप गरीब व्यक्ति भी हैं आप एक पत्ता फूल या पानी भी दें तो भी मैं स्वीकार करूँ.
There is a story of when Hanuman Ji was helping to build that bridge over the Indian Ocean to Sri Lanka.
वो कहानी है कि जब जो है हनुमान जी मदद कर रहे थे रामचंद्र जी को ब्रिज बनाने में.
Hanuman Ji was so powerful. He was using every bit of his God-given strength in the service of Sri Ram.
हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे और हमारी हर एक शक्ति को राम की सेवा में लगा रहे थे.
Literally tearing the tops of mountains off miles wide and placing them in the ocean to float.
वो बड़े बड़े पर्वत की चोटियों को तोड़ के जो है समुद्र में फेंक रहे थे.
While he was working to his full capacity, There was a little spider. Some say a squirrel, others say a spider.
तो वहाँ पे एक छोटा सा कोई प्राणी भी था, वो भी मुझे मदद कर रहा था.
But in either case, this little spider was just kicking grains of dust, of sand, on top of these rocks.
और वो छोटी सी गिलहरी जो थी, थोड़े-थोड़े जो है धूल के कण फेंक रही थी वो पत्थरों के ऊपर.
And Hanuman, lifting big mountain, he said, "Spider, get out of my way. What is this kicking grain of sand? Get out of my way."
तो हनुमान जी कहने लगे, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, तुम्हारे छोटे-छोटे दाने से क्या होगा?
And Sri Ramchandra ji, he corrected Hanuman. He said, "Hanuman ji, why you are saying like this? You are doing everything within your power to serve me, and this little spider is doing everything within his power to serve me. Therefore, you are both equal in my eyes."
भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे में जितनी क्षमता है तुम कर रहे हो और उसमें जितनी क्षमता है वो कर रहे हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम दोनों समान हो.
Krishna does not see how much we give, he sees how much we hold back.
कृष्ण भगवान ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं, लेकिन कितना वापस रख रहे हैं वो देखते हैं.
If we give everything we can give to help for Krishna, he is fully satisfied, however insignificant we may be.
अगर हमारे पास जो सब कुछ अगर हम दे दें तो कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं.
So Sudama, he was a florist. He didn't have much money. He didn't have much fame. He didn't have much of anything. But he knew how to make garlands. So he made them for Krishna.
Sudama ek mali the, unke paas na to yash tha na paisa tha, kuch nahi tha, sirf mala banana jante the aur unhone Krishna ke liye bana diye.
And Krishna and Balaram were so satisfied.
Aur Krishna aur Balaram purna santusht ho gaye.
That they said to Sudama, "You ask of us any benediction you like."
Sudama se kehne lage, aapko jo vardaan chahiye mang lo.
Anything you ask, we will fulfill your desire.
Aap jo bhi mang lo, hum aapki ichha puri kar denge.
Sudama bowed his head with great humility, and he asked for 3 desires to be fulfilled.
Sudama ne namrata purvak pranam karke 3 ichhaen puri mangi.
"Let me have unshakable devotion to you, Krishna, who are the supreme personality of Godhead."
Mere ko aapke prati jo hai purna bhakti prapt ho.
"Let me always be intimately in friendship with your devotees."
Mere aapke bhakton se ghanishth sambandhta aur mitrata rahe.
"And let me always be transcendentally compassionate to all living beings."
Aur main sab prani ke upar bhi kripalu bhavna rakhu.
If we really want to please God, this is what we should ask for.
Agar hum bhagwan ko prasann karna chahte hain to ye cheeze mangni chahiye.
If we have these things, we have achieved the perfection of life.
Agar hamare paas ye cheeze hain to hame jeevan ki siddhi mil gayi hai.
Pure faith and devotion into the Supreme Lord.
Bhagwan mein shraddha aur bhakti.
Loving friendship with his devotees.
Unke bhakton se premmay rishte.
And a compassionate spirit to serve and to help the downtrodden people of this world who are forgetful of the truth.
Aur jo pati jeev jo bhagwan ko bhul gaye hain unki madad karne ke liye kripa bhavna.
And these are the 3 aspirations of a sincere yogi.
Yahi 3 cheeze sachche yogi ki hoti hain.
Everything he does he wants to do in devotion to God.
Jo bhi wo karte hain wo bhagwan ki bhakti mein karna chahte
hain. He's always seeking the friendship and the blessings of the devotees.
वो हमेशा भक्तों का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं.
And he's willing to make great sacrifices to help other living beings to come closer to God.
और वो दूसरे जीवों को भगवान के करीब आने के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं.
Krishna was so happy. He said to Sudama that I give you the fulfillment of all of these blessings.
भगवान बहुत प्रसन्न थे और वो बोले कि मैं तीनों इच्छा पूरी करूंगा.
And even though Sudama asked for nothing for himself materially, Krishna said, "Besides these things, I will give you the fulfillment of whatever you desire in this world. For you and your family, you will have long lives. You will have all provisions taken care of."
भगवान ने कहा कि तुम्हारे परिवार को और तुम्हें लंबी आयु और सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी.
Sudama again bowed his head down in humility and surrender at the feet of the Lord.
नम्रता और समर्पण की भावना से फिर से वो अपना सर भगवान के चरण कमल में झुका दिए।
I was asked to speak tonight on the topic of the perfection of life.
आज मुझे ये बताया गया था कि जीवन की सिद्धि क्या है, इस पर बोलने के लिए।
What we have all witnessed by hearing this wonderful spirit of devotion is the perfection of life.
आज जो हमने सुना है भक्ति की भावना, यही जीवन की सिद्धि है।
The perfection of life is simply to aspire for service.
जीवन की सिद्धि इसी में है कि सेवा की अभिलाषा रखना।
And that pure spiritual service attitude is awakened by associating with spiritual people and by chanting the holy name of God.
और ये भावना तभी जागृत होती है जब हम आध्यात्मिक लोगों का संग करते हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं।
Krishna concludes the sixth chapter of Gita with that great sloka, Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana sarvam bhajate sumam samayuktatamamataha. That of all yogis, one who is intimately related with me through faith and devotion, he is highest of all yogis. He has attained the true perfection of yoga.
भगवान गीता के छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे प्रेम से भक्ति कर रहा है वही सबसे बड़ा ऊंचा योगी है।
Simply to control our mind and senses and achieve peace from the frustrations of life is a very low state of consciousness.
और सिर्फ अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और शांति प्राप्त करना, ये तो बहुत ही नीच चेतना है।
What to speak of how terribly low it is to still be disturbed by the mind and the senses.
और उससे ज्यादा पतित है कि अगर हम मन और इंद्रियों के गुलाम बने रहें।
But the highest and the purest state of consciousness is to utilize this mind and utilize these senses and utilize whatever God has given us for the glory of God and the service of humanity.
और सच्ची इसका उद्देश्य यह है कि जो भी भगवान ने हमें दिया है उसको भगवान की सेवा में यूज करें, उपयोग करें।
Rupa Goswami has said, if you simply please Krishna, never consider yourself the loser, but you will gain millions and billions and trillions of times.
अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ खो जाएंगे, लेकिन लाखों अरबों बार आपको फायदा होगा।
By chanting God's holy name, this consciousness, which is the very essence and nature of the soul of every living entity, awakens from within our own heart.
भगवान का नाम कीर्तन करने से यही चेतना जो है पुनः जागृत हो जाती है।
There is so much terrible violence due to greed and ego right here in this city of Bombay as well as throughout the whole world.
लोभ और अहंकार के कारण कितनी हिंसा हो रही है बंबई में और पूरी दुनिया में भी।
People think that the problem in this city is poverty.
लोग सोचते हैं कि यह समस्या है कि गरीबी है।
That is correct. Spiritual poverty.
वो सत्य है, लेकिन वो आध्यात्मिक गरीबी है।
Due to spiritual poverty, the rich are selfishly exploiting the poor.
क्योंकि अमीरता के कारण जो है अमीर लोग गरीब को शोषण कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति कारण।
And they are all miserable.
और वो सभी दुखी हैं।
Spiritual wealth means humility, compassion. And a charitable disposition in devotion to God.
नम्रता, दया और भगवान के प्रति सेवा भावना, यही जो है सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति है।
This is the greatest need in our society.
वो आज हमारे समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है।
The chanting of the holy name of the Lord brings about the awakening of these qualities within the heart of everyone.
भगवान के नाम कीर्तन से ये सब गुण जो है सब में पुनः जागृत हो जाते हैं।
वाल्मीकि मुनि वाज अ टेरिबल डेमोनिक मर्डरर एंड डैकोइट, बट बाय चैंटिंग द नेम ऑफ राम ही कंट्रीब्यूटेड द ब्यूटीफुल वर्क ऑफ रामायण फॉर द बेनिफिट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड।
वाल्मीकि मुनि इतने बड़े डाकू थे, लेकिन भगवान के नाम कीर्तन से उन्होंने इतनी सुंदर रामायण लिखी जिससे जगत का कल्याण हो सके।
दिस इज द पावर ऑफ गॉड्स नेम।
ये भगवान के नाम की शक्ति है।
एंड इट इज फ्री, इट कॉस्ट नथिंग।
और ये मुफ्त में, इसकी कोई कीमत नहीं है।
द ओनली प्राइस इज आवर सिंसेरिटी एंड आवर विलिंगनेस टू चैंट।
और इसकी बस यही प्राइस है कि हम इसको सच्चे दिल से पुकारें।
बट येट वी डोंट हैव टाइम।
फिर भी हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है.
We have too many other things to take care of in this world.
हम इस दुनिया के कई चीजों में लगे रहते हैं.
And through all of our endeavors, we are just making the problems of this world worse.
और हमारे सब प्रयासों से जो है समस्या बढ़ती जा रही हैं.
It is a fact.
यही सत्य है.
God has given us the supreme, most precious gift in all creation, His holy name, and we are refusing to accept it.
भगवान ने जो है अपना नाम दिया है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते.
By associating with saintly people,
साधु पुरुषों का संग करने से,
naturally, the propensity to accept the gift of God's love through His name becomes natural in our life.
भगवान के नाम के भेंट को स्वीकार करना स्वाभाविक हो जाता है.
That is why such meetings as this evening are of the utmost importance to human society.
जैसे आज हम एकत्रित हुए हैं, ये समाज के लिए बहुत जरूरी है.
Here we have many hundreds of people sitting together to hear the glories of the Lord and to chant His holy name.
यहाँ पर सैकड़ों लोग एकत्रित हैं भगवान के गुण सुनने के लिए और भगवान का कीर्तन करने के लिए.
Such loving and wonderful souls who come together for this purpose.
और इतने प्रेममय और सुंदर आत्माएं हैं जो इसलिए एकत्रित हो रहे हैं.
Here in Bombay there are so many cinema houses you could be at tonight.
ऐसे कई सिनेमा घर है जहां आप आज जा सकते थे.
There are so many television shows you could be watching at your home.
और घर पर बैठकर आप टेलीविजन देख सकते थे.
But you have all chosen to sacrifice all those things this evening to come to hear and chant the glories of the Lord.
और ऐसे मनोरंजन के कई साधन को छोड़कर जो है आप ये भगवान के नाम कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए हैं.
This is the true example that is needed in humanity.
यही सच्ची उदाहरण है जो मानवता में आवश्यक है.
We have not come together tonight to just egoistically say we are the best religion, everyone else is something else.
हम इसलिए नहीं एकत्रित हुए कहने के लिए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब नीच हैं.
We have come to hear the truth.
हम सत्य को प्रदान करने के लिए आए
हैं. To purify our lives.
अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए.
To cultivate sentiments of service and love.
जिससे कि सेवा और प्रेम की भावना पैदा हो सके.
By regularly meeting in this way, spiritual life, yoga becomes natural.
ऐसा जीवन बताने से आध्यात्मिक जीवन जो है वो स्वाभाविक हो जाता है.
Without such association, it simply is like an imagination. We think that we're religious, but what are we really doing as a sacrifice in the service of God?
ऐसा संघ के बिना हम जो है हम वास्तव में वो धार्मिक मानते हैं, लेकिन वो होता नहीं है.
When we chant the names of the Lord together, we are practicing what is called the Yuga Dharma, the recommended process of self-realization in this age of Kali Yuga.
जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो ये एक युग धर्म है भगवान की प्राप्ति करने का.
And according to the Shastra, there is nothing that compares to it.
शास्त्र के अनुसार इसकी तुलना में और कुछ नहीं है.
Silent meditation, according to Shastra, was the recommended process in Satya Yuga.
ये ध्यान करना ये तो सत्य की विधि बताई जाती है.
Performing ornate rituals was the process in Treta Yuga.
रीति रिवाज करना ये त्रेता युग की धर्म थी.
Worshipping the form of the Lord with great opulence was the process in Dwapar Yuga.
बड़े ऐश्वर्य से भगवान के रूप की आराधना करना ये जो है द्वापर युग की विधि थी.
But in Kali Yuga, all the effects of all of these other processes is easily achieved by simply coming together like tonight to chant the holy name of God.
Kali Yuga में लेकिन ये सब विधियों का फल जो है अगर हम एक साथ एकत्र होकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो मिल सकता है.
But we must chant regularly.
लेकिन हमें नियम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए.
Like medicine,
जैसे दवाई होती है.
You do not just take it once and then go away and expect you will be healed. You must take it regularly.
हम ये नहीं सोचते कि एक बार दवाई ली तो हम ठीक हो जाएंगे.
And it must be done sincerely and attentively.
और सच्चे दिल से ईमानदारी से होनी चाहिए.
With an attitude of service.
सेवा भावना के साथ.
And then, very quickly, and very simply, we can all not only understand, but we can achieve and experience the perfection of life.
और फिर बड़ी सरलता से हम जो है जीवन के परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।
लॉर्ड चैतन्य सेड नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम सज्ज कबु नॉय श्रवणारी सुदे चेति खोरिये उदय। That pure love of God is dormant within the heart of every living being.
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सच्चा प्रेम सब जीव के हृदय में है ही।
By simply chanting the holy names, following the instructions of Guru, and associating with devotees, this pure love is awakened from within our heart.
भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, भक्तों का संग करने से यह प्रेम जागृत हो सकता है।
The perfection of life.
यही जीवन की सिद्धि है।
हरि बोल।
हरि बोल।
Are there any questions?
कोई प्रश्न है तो पूछे।
महाराज, टुडे वन माताजी वाज आस्किंग मी क्वेश्चन, पर्टिकुलरली नाउ विथ रेफरेंस टू नाउ आई कनेक्ट इट विथ धोबी कथा। पीपल से वर्क इज वर्शिप, दिस धोबी वाज डूइंग हिज सर्विस, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ कंसा एंड ही वाज डूइंग हिज जॉब एंड पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब, दे हैव नो टाइम टू कम हियर, बट दे फील बिकॉज द नेशनल लीडर्स एंड द सोसाइटी इज टीचिंग देम work is worship. So in that respect, how we can understand the story of Dhobi is justifiable, particularly with reference to whatever we have been taught today in the society.
Haribo.
Haribo. तो इनका प्रश्न ये था कि जैसे ये धोबी की कथा से हमें मालूम पड़ता है कि वो कंस का सेवक था, तो वो तो अपना कर्तव्य कर रहा था, फिर उसी क्या गलती थी, और लोग भी यही कहते हैं कि अपना कार्य कर रहे हैं और हमें कथा में आने के लिए समय नहीं है।
Very nice question.
बहुत अच्छा प्रश्न।
This idea of work is worship was the philosophy of Kamsa.
ये जो है अपना कार्य ही अपनी आराधना है, ये कंस का दर्शन शास्त्र था।
Do your work and just do your work obediently, dutifully, and that is the perfection of your life.
अपना कर्तव्य करो आज्ञा पालक के रूप में, और यही जीवन की सिद्धि है।
That's what Kamsa taught him.
यही कंस बोलते हैं।
And Krishna chopped off his head.
और कृष्ण ने इसका सर काट दिया।
हरि बोल।
हरि बोल।
That answer your question? Krishna says in the third chapter, text 9 of the Gita, Yagyaratat kamanon yatra lokomam karma bandana taratam karma konteya mukta sanga samachara. Work done as a sacrifice for the Supreme Lord Vishnu has to be performed. Otherwise, whatever work you do binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duty for God's satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage.
तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए, और अगर किसी और के लिए कार्य करेंगे तो बंधन का कारण होगा, इसलिए सभी कार्य जो है भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए।
Work done as an offering of love to God is worship. Any other type of work is karmic. It causes bondage.
अगर भगवान की सेवा के लिए कार्य किया जाए तो वही आराधना है, और कोई कार्य होगा तो वो कर्म या बंधन हो जाएगा।
That is what Gita teaches.
यह गीता सिखलाती है।
After all, Duryodhan was doing his work too.
Duryodhan भी अपना कार्य कर रहे थे।
But he was fighting that battle out of greed.
वो लोभ के कारण लड़ाई लड़ रहे थे।
With selfish motives.
स्वार्थ के उद्देश्य से।
Arjuna did the exact same thing as Duryodhana, shooting arrows, driving chariot, arranging military phalanxes, but he did it as an offering of love to God.
अर्जुन ने भी वही कार्य किए जो दुर्योधन ने किए, लेकिन वो भगवान के लिए किए।
The difference between Duryodhana and Arjuna was the difference between Sudama and the washerman.
तो जो दुर्योधन और अर्जुन में अंतर था वही सुदामा और जो धोबी है उसमें अंतर था।
Duryodhana was ultimately killed.
अंत में दुर्योधन का नाश हो गया।
And Arjuna was liberated.
और अर्जुन मुक्त हो गए।
Yoga means to reconnect our consciousness with God. And the yoga of work is to connect our work with God.
Yoga ka matlab ye hai ki apne kaarya ko bhagwan se jodna.
But how do we connect our work with God?
लेकिन अपने कार्य को कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं?
Through our consciousness.
अपनी चेतना के द्वारा.
By doing it in proper spiritual consciousness.
इसको सही दिव्य चेतना में करते हुए.
It is not that you have to change your job or give everything away. It means you have to learn how to live in divine consciousness.
इसका मतलब ये नहीं कि अपना नौकरी छोड़ना है, लेकिन दिव्य चेतना में जीवन बिताना है.
मन मना भव मद भक्तो माध्य जिम नम नमास करु माम एवाईशाशी सच्चम ते प्राति जानी प्रियोशी में. The consciousness, Krishna says, is always think of me, worship me, be my devotee.
Krishna Bhagavan कहते हैं हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्तगणों और मेरे आराधना करो.
When we associate with saintly people, like we are tonight.
जब हम भक्तों का संग करते हैं, जैसे कि आज हम कर रहे हैं.
When we make our home a temple and worship the Lord.
जब हम घर को मंदिर बना के भगवान की आराधना
करते हैं. When we regularly purify and sanctify our minds by chanting His names.
जब अपने मन को शुद्ध करते हैं उनका नाम कीर्तन के द्वारा.
When we live a pure life, abstaining from such sins as illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating.
जब हम सब पाप कार्य जैसे मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, पराई स्त्री का संग करना जब ये छोड़ते हैं.
By practicing these simple processes, our mind becomes divine. Our consciousness becomes pure. And then naturally, whatever we do in our work, we will do it in a spirit of compassion and love as an offering to God.
फिर ऐसी चेतना शुद्ध होने पर अपने आप जो हम करेंगे वो भगवान की सेवा के लिए एक अर्पण हो जाएगा.
Bhagavad Gita is not just a theoretical scripture for philosophers and Brahmins. Bhagavad Gita is a guide of how every man or woman or child can live in this world and perfect their lives.
ये भगवत गीता कोई खाली शास्त्र नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन को परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है.
Any other questions?
और कोई प्रश्न?
After killing washerman, when Krishna visited other places, they offered the clothes and others. And Krishna blessed them for Vaikuntha, whereas they have offered the things under the pressure with the fear, not with the respect. So why they have blessed for Vaikuntha, whereas they have
who gave with fear?
They have offered who? The things under
who?
The fear.
Who's they?
Because they might have think
who?
Before when Krishna cut the neck of washerman, so they may also he may cut also neck of the servants,
hmm.
Other tailors and others, after visiting the place, other places, they offered the things, hmm. Clothes and others. So they might have offered the things under the fear, not with the respect. Maybe. So, and they have offered them and they have blessed them for the Vaikuntha. Why?
Revo. Obviously, they offered with such humility and devotion. It was not out of fear.
वो इतनी नम्रता से उन्होंने दिया था कि वो डर के कारण नहीं दिया था उन्होंने.
They were offering with the love of their heart.
वो अपने हृदय के प्रेम के साथ दे रहे थे.
They had no fear. They simply wanted to please Krishna.
उनमें डर नहीं था. वो सिर्फ श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे.
But at the beginning, sometimes fear is good.
शुरुआत में थोड़ा भय अच्छा रहता है.
For one who is irreligious, to transform their consciousness to become religious, sometimes God appears fearful.
जो अधार्मिक व्यक्ति हैं, उसकी धार्मिकता की शुरुआत करने के लिए भगवान भयावह प्रतीत होते हैं.
Just like, are you a father? Yes. How many children you have? Two. What is their ages? 13 and 11. Are they here tonight? Yes. Which are they? Acha, you. And who else? Haribo, my friends. You're very fortunate to have such children. If I could have children like that, I would also get married. But I cannot, so I will stay like this. I already know my capacity. If I had children, they would all be demons, so better I become like this. Anyways, do they always behave themselves perfectly? Yes?
बोल रहे क्या वो हमेशा बहुत ही पूर्ण व्यवहार करते हैं, कोई गलती नहीं करते?
हाँ, या या At that time, do you sometimes threaten to punish them? Definitely. Do you like when he threatens to punish you? No. Stand up. Give her a microphone. Do you like when your father threatens to punish you?
No.
Arrivo. So you love her so much, correct? You should both stand up while I'm talking to you. We have this nice family here. So, you love her, and you want her to be happy, but yet you threaten to punish her, and she does not like it. Sometimes when he threatens to punish you, do you become afraid?
Yes.
Yes. Why you make her afraid?
Just to come on the correct path. Huh.
But then after she behaves nicely, then do you have to threaten to punish her?
No, then we love.
Huh?
Then we have to love.
Then you give her all nice things. Correct?
Then, I love.
Then you give her love.
Yeah.
God is a father like you. When we are naughty, he threatens to punish us because he loves us. And he makes us afraid because it's the only way we'll learn. But when we start, after we learn out of fear, we start behaving properly, then God no longer gives us fear. He only gives us his love.
जब ये उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को दंड देता है, वो इसीलिए देता है कि उनको सबक सिखाने के लिए, और जब वो सही मार्ग पर आ जाते हैं तो वो फिर सजा नहीं देता। उसी तरह से भगवान भी ऐसे ही हैं कि जब हम जो उनके संतान हैं, हमको बुरे मार्ग से बचाने के लिए हमें सजा देते हैं, लेकिन बाद में जब हम सही मार्ग पर आ जाते हैं तो फिर कोई सजा नहीं देते, फिर प्रेम ही दिखाते हैं अपना।
Tonight you should give her your love. And you should give him your love. This is Sri Radha Kant, or Radha Damodar. His other name is Ram Kant Singhai. I only know him as Radha Damodar. He has arranged this whole wonderful program tonight. I think we should all offer him our gratitude.
All your mercy, Maharaj.
Arrivo.
It is a mercy of...
I mean, it took a lot of work and sacrifice to invite all of you people here and to arrange prasad for all of you and to set up all these monstrous fans and everything else. But you see, such an act of love, such an act of charity to bring us all together to hear and to chant the glories of the Lord. You may say that it's more important to feed the poor, but what I say is this: that is certainly important. But through such programs like this, when people's hearts change and they become devotees of God and lovers of God, rather than one person feeding the poor, all of us can go out and do whatever we can for the poor. Not only for the poor, poor people, but for the poor, rich people who are also suffering. It is a great act of charity. We are very thankful.
महाराज, when I request young people,
महाराज जी समझा रहे थे कि जैसे राधा दामोदर प्रभु ने इतना अच्छा कार्यक्रम इंतजाम किया है सब लोगों के लिए, जिससे हम आकर भगवान का कथा सुन सकें, यही एक प्रेम दिखाने का तरीका है। सिर्फ ये नहीं कि हम गरीब को खाना दें, वो तो अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा कार्यक्रम रखते हैं तो सिर्फ एक नहीं, हम सभी जो है गरीब को मदद कर सकते हैं। न केवल गरीब गरीब को, लेकिन जो अमीर गरीब हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं, यानी जो आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं, इस तरह से सबकी हम मदद कर सकते हैं।
महाराज, आपने जो मेरे बारे में कहा है, ये तो इसके पीछे तो सब आपकी कृपा है, और जो भक्तजन हैं जो यहाँ आए हैं तो मैं उनके लिए काफ़ी ऋणी हूँ और आपका भी काफ़ी ऋणी हूँ। और मेरा एक प्रश्न है, दिस वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू।
पहले बोल।
व्हेन आई रिक्वेस्ट
यू, ही सेइंग दैट इट्स ऑल ड्यू टू योर मर्सी एंड आई एम इंडेबटेड टू यू एंड ऑल द डिवोटीज।
यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट दोस थिंग्स। You're only supposed to translate what I say.
Not sure. Maharaj bol rahe hain khali jab main bolu wahi anuvad kariye.
When I request young people for your coming to your program, they say that it is too early to us for us to think of spiritual path. And when I request elderly people, they say that why you people dance and feast, only remember God. Why to arrange so big programs? What is the need of all? You can remember God in your house also. Why you make that much show?
What is the purpose of society?
Samaj ka uddeshya kya hai?
Society is meant for the purpose of coming together to purify the atmosphere by our combined devotion to God.
Samaj ka uddeshya ye hai ki hum pure vatavaran ko shuddh kare sab milkar bhakti karne ke dwara.
As far as young people, there is a saying that when bamboo is young, it can easily be bent to whatever shape you like. But when bamboo becomes old, it becomes stiff, and if you try to bend it, it breaks.
ऐसा कहा जाता है नौजवान पुरुष के बारे में, जब कोई पौधा जो है, जब वो छोटा होता है तब तो उसको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो टूट जाता है तोड़ने में.
Prahlad told his 5-year-old friends who used the same argument, "This is the perfect time for God consciousness."
प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से बताते हैं कि यही सही समय है भगवत भावना के लिए.
The older we become, the more we become conditioned and set in our ways, and the more bad habits and attachments we have to give up.
जितना हम वृद्ध हो जाते हैं उतने हमारे अंदर बुरी आदतें हैं छोड़ना मुश्किल हो जाता है.
For a child, God consciousness is natural if we just lead them in the prop with the proper example.
बच्चे के लिए भगवत चेतना स्वाभाविक है अगर हम सच्चा उदाहरण दें.
But for an adult, it becomes very difficult.
लेकिन वृद्ध व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है.
But even if it's difficult, it must be done because it is truth.
लेकिन अगर मुश्किल भी हो तो उसको करना ही चाहिए.
And throughout the scriptures, we read of the absolute necessity of associating with spiritually minded people.
हम शास्त्रों में सब जगह पढ़ते हैं कि कितना आवश्यक है कि साधु पुरुषों का संग करना.
When you become surcharged by that association, then when you go home to your house, then you can really and truly remember God and worship God.
जब हम ऐसे संग से भर जाते हैं तो फिर हम घर में जाकर भी सच्ची भावना से भगवान का स्मरण कर सकते हैं.
Worshipping the Lord in our own private homes and coming to such wonderful satsangs to socially be together, to enrich each other's spiritual lives, they are both essential side by side.
ये दोनों चीजें आवश्यक है कि घर में भी भगवान की आराधना करें और एक साथ एकत्र होकर एक दूसरे की भक्ति को बढ़ावा दें.
If we simply come to this program and then go home and forget everything and practice nothing, then there's very little accomplished.
अगर हम यहाँ आकर जो है घर जाकर सब भूल जाएं यहाँ आने के बाद तो फिर कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ.
And if we simply sit home and think that we're so advanced and so saintly that on our own we can be so spiritual, then very little will be accomplished.
और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं कि घर में रहकर ही भक्ति कर लेंगे तो भी ज्यादा लाभ नहीं होगा.
साधु संग सर्व शस्त्र कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय. Therefore, the two together, to regularly come in the assembly of sincere souls to hear and chant the glories in the Lord, to recharge ourselves and to bring that recharged consciousness home, and regularly chant, regularly worship, and regularly study the scripture and remember God, when we do them side by side, we are on the path of perfection.
तो अगर हमें दोनों चीजें साथ साथ करते हैं कि भगवान के भक्तों का संग भी करते हैं और अपने आप से भी घर में आराधना करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है.
The path that is authorized by God and all the previous acharyas.
यही मार्ग है जो भगवान और पहले के आचार्यों ने बताया हुआ है.
Why we dance? Haribo. We dance because Krishna likes dancing.
नृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण को नृत्य अच्छा लगता है.
You see, God has given you a body.
भगवान ने आपको शरीर दिया है.
Correct? What's the purpose of this body?
इस शरीर के क्या उद्देश्य है?
You have a mouth. The perfection of that mouth is to sing the glories of the Lord and to speak the truth.
मुंह की सिद्धि है कि भगवान के गुण गाना और सत्य को बोलना.
You have arms.
जो हाथ हैं,
we should use our arms to work for God,
और हाथ से भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए.
But when we're not working, because right now we're not working, right? We should use our arms to raise them and to pray and to glorify the Lord.
इसलिए हमें हाथों का उपयोग करना चाहिए कि भगवान के लिए ऊपर उठाना और फिर भगवान के लिए प्रार्थना करना, भगवान
God
के गुणगान.
God has given you nice legs.
भगवान ने हमको सुंदर पैर दिए हैं.
To why not glorify God with our legs?
अपने पैरों से भी भगवान को गुणान्वित कर सकते हैं.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was Krishna himself, appeared in this world to teach us how to use this very body and mind that we have now to glorify God and to perfect our lives.
Sri Chaitanya Mahaprabhu ne samjhaya ki kaise hum apne sharir ko use kar sakte hain bhagwan ki seva mein.
The yogis are sitting like this with their body, their legs, their head, their mouth and their arms. They're just in a stationary condition.
योगी जन तो है बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में बैठते हैं अपने सब शरीर के अंगों को रखते हुए.
But the bhaktas, they don't want all these limbs to simply be stationary. They want them to be utilized to their full capacity to glorify the greatness of God.
और भक्त लोग तो चाहते हैं कि इसका पूर्ण उपयोग करें भगवान के गुण गाने के लिए.
This dancing is not just like a disco.
ये डांस जो है कोई डिस्को डांस की तरह नहीं है.
This is a meditation, a transcendental meditation. In fact, according to the Shastra, it is the highest meditation.
शास्त्र के अनुसार यही सबसे बड़ा ध्यान है.
We are dancing gracefully to offer every movement of our body to the holy name of the Lord.
हम नृत्य इसलिए करते हैं कि हम जो है भगवान के पवित्र नाम को सब अर्पण कर दें.
And we should learn how to chant and dance in this spirit.
हमें सीखना चाहिए कैसे इस भावना से हम नृत्य करें और गाएं.
And even if you don't like to dance, if you simply watch the people dancing while you're chanting, you will become purified.
लेकिन अगर आपको नृत्य करना अच्छा नहीं भी लगे तो खाली आप दूसरों को देखेंगे नृत्य करते तो आप शुद्ध हो जाएंगे.
Because it is a completely spiritual expression.
क्योंकि आध्यात्मिक परिवृत्ति है.
It is an offering of our body, our mind and our words to God.
वो हमारे शरीर और मन और वचन को भगवान को अर्पण कर रहे हैं.
It is a full meditation, not just our mind, not just our words, but our body, mind and words. These are the three things we have to offer to the Lord.
हमारे पास तीन चीजें मन वाणी और वचन ये सभी भगवान को अर्पण करने हैं.
When we chant the holy name, our words are being offered in love.
जब हम नाम कीर्तन करते हैं तो अपने वचन को अर्पण कर रहे
हैं. When we're hearing the holy name, our mind is being offered to the Lord.
जब हम भगवान का नाम श्रवण करते हैं तो हमारा मन अर्पण हो रहा है.
And when we dance gracefully, our body is being offered to the Lord.
और जब हम सुंदर रूप से नृत्य करते हैं तो अपने शरीर को भगवान को अर्पण.
Lord Chaitanya, who is Krishna himself, personally demonstrated this wonderful, sublime process.
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे उन्होंने ये सुंदर तरीका दिखाया था.
And if you just try it, it's the most wonderful thing.
और अगर हम कोशिश करें तो ये सबसे सुंदर चीज है.
Would you rather sit in meditation for 1 hour or would you like to chant and dance for 1 hour?
I would like to dance for 1 hour.
Why?
Because my mind while chanting will never be in one position, but if I dance, I will be chanting. My legs are moving, my hands are moving, but while I'm sitting, I say, nice programs are there on the TV. Something is going on, some sound is coming, but while dancing, I can't hear anything. I'm just enjoying it.
This beautiful child, she's instructing us. To hear from children is very important because, face it, we are all children spiritually. She is instructing us that even such a beautiful child as this can completely absorb her consciousness in God through this process of chanting and dancing. Therefore, in this age of Kali Yuga, there is no process more recommended than this. Thank you very much. She is a very good preacher. You. Do you like to chant and dance?
Yes.
Why?
Because something physical which we give to God, we give everything, what, and we children, we are very much, you know, of the type we always are.
You like to do things?
Yes.
Haribo.
Haribo.
The purpose of family is to come, is to all unite in God's service. Such a wonderful program, such kind gentlemen as this has brought children. Your mothers and fathers are here? Mothers and fathers, stand up, please. Haribo. In such a setting, the mother, the wife, the children, they're all enjoying spiritual life together, chanting, dancing, completely absorbed in Krishna, the perfection of yoga. Otherwise, if you go to some other program where there's no chanting and dancing, would you come? They wouldn't come. If it was just philosophy on Vedanta, children wouldn't take interest. And we would just get them some theoretical conceptualizations. But this wonderful gift of Lord Chaitanya, of Nam Sankirtan, the whole family, everyone could come together and everyone can be equally benefited toward the perfection of life. Thank you very much. Hari Bol.
Hari Bol.
You can translate whatever else.
महाराज जी ने यह भी बताया कि जैसे कोई ये हमें बच्चों से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, आध्यात्मिक रूप से हम सब बच्चे हैं, और यह भी बताया कि किस तरह से जो है अगर कोई और दूसरा कार्यक्रम होता है तो उसमें शायद बच्चों को आनंद न मिले, लेकिन भगवान का नाम जब एक कीर्तन और साथ में नृत्य करना ऐसे तरीका है जिसमें एक परिवार के सभी लोग जो हैं एक साथ आनंद ग्रहण कर सकते हैं, और यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है कि हम एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं.
So would everyone like to chant and dance?
Yes.
Raise both your arms if you do not want to chant and dance.
जो लोग नृत्य और कीर्तन नहीं करना चाहते वो हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर.
If you want to chant and dance, raise both your arms and say Hari Bol.
Yeah!